जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jai Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jai Jai Prabhupada Prabhupada Prabhupad Jaya Jaya Prabhupad Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Stotra Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki Srimad Bhagavatam Pahla Skand Tisra Adhyay Samast Avataron Ke Uts Krishna Shlok Sankhya 3 Yasya Avayava Samsthane Kalpitaha Loka Vistaraha Tatvai Bhagavataha Rupam Vishuddham Sattvam Urjitam यस्यावयवसंस्थाने
कल्पितो लोकविस्तरः
तद्वै भगवतो रूपम्
विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्
यस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् यस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः
त्वयि भगवतो रूपं
विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् यस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् यस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् माताजी यस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् यस्य जिसका अवयव शारीरिक विस्तार संस्थानैः स्थित कल्पितः कल्पना किया गया लोक निवासियों के लोक विस्तरः विभिन्न तत्वै लेकिन वह है भगवतः भगवान का रूपम रूप विशुद्धम शुद्ध सत्वम अस्तित्व ऊर्जितम सर्वश्रेष्ठ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं रहता उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है तात्पर्य भगवान के विराट रूप या विश्व रूप की कल्पना विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं, उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कहा जा चुका है, भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत्त्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक साथ भिन्न तथा अभिन्न हैं। इस तरह विराट रूप की कल्पना विशेषतया निर्विशेषवादी के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और उनके अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श नहीं हो पाता। अनुवाद को दोहराइएगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं
భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం ఆరాధ్య భగవాన్ వ్రజేశ తనయ తద్ధామ వృందావనం రమ్యా కాచిదుపాసనా వ్రజవధూ వర్గేణ యా కల్పితా శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమాపుమర్థో మహాన్ శ్రీచైతన్య మహాప్రభోర్మతమిదం తత్రాదరహన పరః హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే
హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవత్ కే పహలే స్కంద్ కే దూసరే అధ్యాయ మే సూత గోస్వామి నే అప్నా ప్రవచన ఆరంభ కియా. నైమిషారణ్య మే ఏకత్ర జితనే భీ ఋషిగణ థే ఉన్హోనే కై ప్రశ్న కియే థే సూత గోస్వామి సే ఔర్ క్రమశః ఇన్ ప్రశ్నో కా ఉత్తర్ దేతే జా రహే హై సూత గోస్వామి. దూసరే అధ్యాయ మే పరమ సత్య కి పహచాన్ సూత గోస్వామి నే కరాయి థీ. వదంతి తత్ తత్వ విదస్ తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇతి శబ్ద్యతే. కి పరమ సత్య జో కి వాస్తవ మే జ్ఞానం అద్వయం హై ఉన్కో తీన్ తరహ సే జానా జా సక్తా హై, తీన్ స్తరో మే జానా జా సక్తా హై. ఏక హై నిరాకార బ్రహ్మ, ఫిర్ హై హరేక్ ప్రాణి కే హృదయ మే స్థిత పరమాత్మా, ఔర్ ఫిర్ అంతతః భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ. భగవాన్ కా సాక్షాత్కార్ సర్వోపరి సాక్షాత్కార్ హై, ఔర్ జో భగవాన్ కా సాక్షాత్కార్ కర్తా హై ఉసే పరమాత్మా ఔర్ నిరాకార్ బ్రహ్మ కా సాక్షాత్కార్ అప్నే ఆప్ హో జాతా హై. తో నిరాకార్ బ్రహ్మ ఔర్ పరమాత్మా కా సాక్షాత్కార్ భగవత్ సాక్షాత్కార్ కి అంతర్గత ఆతా హై. తో ఫిర్ ఆగే చల్ కే సూత గోస్వామి బతాతే హై కి వాస్తవ మే వేదో మే జిన్కా వర్ణన్ హై భగవాన్ కహకే వో వాస్తవ మే శ్రీ కృష్ణ హీ హై. ఔర్ యే శ్రీ కృష్ణ అప్నే ఆప్ కో విస్తార్ కర్తే హై, ఉన్సే భౌతిక శక్తి ఉత్పన్న హోతీ హై, ఔర్ ఫిర్ యే భౌతిక శక్తి కే అంతర్గత భీ అందర్ ప్రవిష్ట హో జాతే హై వాసుదేవ్ కే రూప్ మే. వాసుదేవ్ వో హై జో సర్వవ్యాపీ హై, ఔర్ ఫిర్ అప్నే విష్ణు స్వరూపో మే వో సారే సృష్టి కా సృజన్ సంహార్ ఆది దేఖతే హై. ఔర్ ఏసే యహీ భగవాన్ వాసుదేవ్ ఫిర్ ఇన్ బ్రహ్మాండో మే ప్రవేశ్ కర్కే లీలాఓ కో భీ ప్రకట్ కర్తే హై, వో లీలా అవతార్ కహలాతే హై. తో ఏసే దూసరే అధ్యాయ కి సమాప్తి హుయీ. ఫిర్ అబ్ తీసరే అధ్యాయ మే భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ కే బారే మే సూత గోస్వామి బతాయేంగే. సర్వప్రథమ తీన్ ప్రకార్ కే పురుష అవతార్, పహలే తో దూసరే అధ్యాయ మే వో బతా చుకే హై. कि भगवान वासुदेव विष्णु रूप में प्रविष्ट होते हैं भौतिक जगत में, परंतु कैसे प्रविष्ट होते हैं इसका ज्ञान वो तीसरे अध्याय में पहले से पांचवें श्लोक में देते हैं, जिसमें कि वो पुरुष अवतारों का वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में वो कह चुके हैं पौरुषम रूपम जागृहे, कि वही भगवान वासुदेव जागृहे या स्वीकार करते हैं पौरुषम रूपम या पुरुष अवतार। जैसे आपको पता है कि भगवान के छह प्रकार के अवतार होते हैं, उनमें से एक प्रकार के अवतार हैं पुरुष अवतार। वो विष्णु रूप भगवान के जो कि इस भौतिक सृष्टि के संबंध में या संपर्क में आते हैं और कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए जागृहे पौरुषम रूपम, ऐसे महाविष्णु का रूप सर्वप्रथम वो धारण करते हैं, ये पहले श्लोक में वर्णित है। महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम कारणोदकशाय विष्णु भी है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक विशाल सागर है जिसको कारण सागर कहते हैं। वैसे तो अधिकतर लोग इस भौतिक सृष्टि के परे क्या है इसको नहीं जानते हैं, ये भौतिक सृष्टि के अंदर भी क्या है इसको भी जानना बहुत मुश्किल है। बहुत भौतिक सृष्टि की बात दूर है, इस पृथ्वी लोक में सब जगह क्या चल रहा है ये भी जानना बहुत मुश्किल है। समुद्र के नीचे, आसमान में, पहाड़ों के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है वो जानना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी के बाद दूर है हमारे शरीर में क्या चल रहा है जानना बहुत मुश्किल है। शरीर की बात दूर है, शरीर के एक अवयव को लीजिए, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको जानना बहुत मुश्किल है। आंख को देखिए, आंख कैसे चल रही है, आंख इस अवयव में कौन से भाग हैं, वो कैसे चलते हैं, वैज्ञानिक भी कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। हमारी समझ बहुत ऊपर ऊपर की है। एक अवयव की बात छोड़िए, अवयव का एक छोटा सा भाग भी लीजिए, उसे भी समझना बहुत मुश्किल है। उस भाग की बात छोड़िए, अणु की बात, अणु को समझना कितना मुश्किल है। तो ये भौतिक सृष्टि को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ये भौतिक सृष्टि उत्पन्न हो तो इसके परे है भगवान का धाम, तो कैसे समझ पाएंगे लोग भगवान के धाम को। परंतु ऐसा एक भगवान का धाम है और हमारे भौतिक सृष्टि के परे ये विशाल सागर है, कारण सागर। ये कारण सागर का जल ये साधारण भौतिक जल नहीं है, और इस कारण सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं। इसे कारण सागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे इसमें महाविष्णु विश्राम करते हैं और उनसे फिर सारे भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति होती है। भौतिक सृष्टि का कारण है ये, इसलिए इसे कारण सागर कहते हैं। तो भगवान संकर्षण से उत्पन्न होने वाले या विस्तारित रूप महाविष्णु या कारणोदकशाय विष्णु यहां शयन करते हैं। कारण उदक शाही विष्णु, उदक मतलब जल, तो कारण उदक शाही, तो कारण जल के सागर में शयन करने वाले विष्णु को कारणोदक शाही विष्णु कहते हैं। और उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वो अपने दृष्टिपात मात्र के द्वारा प्रकृति को गर्भवित करते हैं सारे बद्ध जीवों से और फिर सारे सृष्टि का सृजन होने लगता है। विशेष करके इस पहले श्लोक में बताया गया है कि भगवान महाविष्णु के दृष्टि के दृष्टिपात के कारण महतत्व उत्पन्न होता है जो भौतिक सृष्टि का कारण है। महतत्व से आगे चल के जो 16 तत्व हैं जिनको षोडश कलम कहा गया है इस श्लोक में वो उत्पन्न होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन तथा 5 महाभूत और इस तरह से क्रमशः सृष्टि का सृजन होता है। फिर जैसे जैसे भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं वही कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होते हैं और हर एक ब्रह्मांड जो कि अंडे के आकार में है इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर जो भी जगह है उसको आधा भर देते हैं अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले जल से। इसको गर्भोदक सागर कहते हैं और इस गर्भोदक सागर में भगवान विष्णु जो कि महाविष्णु से विस्तार हुए हैं वो शयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर, इसलिए उनको गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं, गर्भ उदकशायी विष्णु। गर्भ जल के सागर में शयन करने वाले और यही गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से एक कमल पुष्प आता है और उस कमल पुष्प के ऊपर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये दूसरे श्लोक का विषय है और सूत गोस्वामी यहां ब्रह्मा जी का वर्णन करते हैं, विश्व सृजाम पति ही, ब्रह्मा विश्व सृजाम पति ही, और इसका अर्थ ये है ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। जितने भी इंजीनियर हैं ब्रह्मांड में उन सब के पति हैं ब्रह्मा जी, ऐसे सूत गोस्वामी बताते हैं। इसलिए गर्भोदकशायी विष्णु को पद्मनाभ भी कहा जाता है, जिनके नाभि से एक पद्म पुष्प उत्पन्न हुआ जिस पुष्प के ऊपर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस तरह से दूसरे श्लोक में वर्णन है और तीसरे से पांचवें श्लोक में वर्णन ये आएगा कि किस तरह गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से उत्पन्न होने वाले पद्म पुष्प में ही सारे 14 भुवन स्थित हैं, पाताल लोक से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक। साथ साथ गर्भोदकशायी विष्णु से विस्तार होकर क्षीरोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं। क्षीर उदकशायी विष्णु, क्षीर मतलब दूध, जैसे यहां नमकीन जल का सागर है उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न पदार्थों के बने हुए सागर पाए जाते हैं। तो कहीं श्वेत द्वीप है जहां पे दूध का सागर है और इस दूध के सागर में क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं, दूध के सागर में शयन करने वाले क्षीरोदकशायी विष्णु। एक बार जब माता यशोदा श्री कृष्ण को क्षीरोदकशायी विष्णु के बारे में बता रही थी तो कृष्ण के मन में प्रश्न आया। तो देखिए वैदिक काल में बचपन से ही बच्चों को यह सब सिखाया जाता था कि महाविष्णु कौन है, गर्भोदकशायी विष्णु कौन है, क्षीरोदकशायी विष्णु कौन है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि हम कहां से आए, ये सृष्टि कहां से आई, ये तारे नक्षत्र ग्रह कहां से आए, ये एक मूल प्रश्न है जो हरेक सोचने वाले व्यक्ति के मन में अवश्य आता है। शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में एक बार भी आसमान की ओर ऊपर सर उठा के ये सोचा नहीं होगा कि ये सब कहां से आया और कैसे आया। तो माता यशोदा भी श्री कृष्ण को ही बता रही थी क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में, और वहां एक दूध का सागर है और दूध के सागर में क्षीरोदक्षाय भगवान शयन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण तो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन गोकुल है, गायों का घर है, तो उनको तो यही पता है कि दूध गाय से आता है। वहां कामधेनु गाय है, बहुत सा दूध देते हैं, लेकिन फिर भी जब श्री कृष्ण ने सुना कि दूध का सागर है तो इसके लिए तो बहुत सारे गाय की जरूरत है, तो अपने माता से पूछा कि दूध के सागर को बनाने के लिए कितने गाय लगी होंगी। फिर माता यशोदा हंसने लगी और कहने लगी कि जिस भगवान ने गायों को बनाया है, जिनसे कि दूध आता है, वो अपने आप ही दूध बनाने में सक्षम है, इसलिए उन्होंने दूध बनाया है, दूध का सागर बनाया है, और इस दूध के सागर में स्वयं भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विश्राम करते हैं। और ये क्षीरोदक्षाय विष्णु को हरि कहते हैं, जो हरि के नाम से जाने जाते हैं, हरि नाम जो कहते हैं, वो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और आगे चल के हम देखने वाले हैं कि कैसे इस क्षीरोदक्षाय विष्णु से सारे लीला अवतार प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड में फिर विभिन्न प्रकार के लीलाएं करते हैं। तो इस तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोकों में सूत गोस्वामी पुरुष अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, और 6 श्लोक से आगे चल के करीब करीब और 20-21 श्लोकों में वो अनेक लीला अवतारों का वर्णन करते हैं। 22 लीला अवतारों का उल्लेख है इस अध्याय में। इसका मतलब ये नहीं है कि लीला अवतार केवल 22 हैं, केवल उदाहरण थोड़े मात्र महत्वपूर्ण जो अवतार हैं उनका उल्लेख सूत गोस्वामी करते हैं। तो इस पहले भाग में, तीसरे अध्याय के पहले भाग में महाविष्णु का वर्णन करने के बाद, जब गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन कर चुके हैं दूसरे श्लोक में, अब तीसरे श्लोक में वो विराट रूप का वर्णन करते हैं। इस सृष्टि में भगवान के नाभि कमल से जब नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होता है तो सारे लोक और ग्रह उस कमल में रहते हैं, तो इनको एक काल्पनिक रूप दिया जाता है जिसको विश्व रूप कहते हैं। तो ये विराट रूप या विश्व रूप एक काल्पनिक रूप है, इसलिए यहां भी कल्पना शब्द का कल्पितो लोक विस्तरः, ये एक काल्पनिक रूप है जहां हम कल्पना करते हैं कि ये सारे पहाड़ जो हैं, ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं, और ये पेड़ हैं, उनके शरीर के रोम हैं, और सूरज चांद इत्यादि है, ये भगवान की आंखें हैं, फिर ये भगवान के तलुए हैं पाताल लोक आदि, फिर ब्रह्मलोक उनका सर है। तो ये एक कल्पना की जाती है, वास्तविक ऐसे शरीर नहीं है। तो क्यों ऐसे कल्पना की जाती है? तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि उन लोगों के लिए जिनके हृदय में भगवान के दिव्य रूप के प्रति श्रद्धा नहीं है, या जिनके मन में ये बात बैठ नहीं सकती है कि भगवान का भी कोई रूप हो सकता है, क्योंकि वो इस भौतिक सृष्टि के अपने निजी अनुभव से, अनुभव की सीमा से बद्ध रहते हैं। यहां इस दुनिया में हमारे अनुभव में जो भी रूप हम देखते हैं वो सब भौतिक रूप ही है, इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान यदि हैं तो उनका भी रूप भौतिक होना चाहिए, लेकिन भगवान को भौतिक हो नहीं सकते। फिर निष्कर्ष क्या है कि भगवान निराकार है, भगवान केवल एक प्रकाश है, एक ज्योति है। तो ये एक मूल बात है, क्योंकि लोगों के मन में ये विचार बैठती नहीं है कि भगवान का रूप भी आध्यात्मिक रूप है। हमें आध्यात्मिक रूप का अनुभव भले न हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक रूप हो ही नहीं सकता। हमारे अनुभव के परे आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप ही आध्यात्मिक रूप है। निराकार ब्रह्म अवश्य है वहां पर, परंतु उस निराकार ब्रह्म में तैरने वाले अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं। उन वैकुंठ लोकों में अनंत कोटि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके रूप हैं, और हर एक वैकुंठ लोक में भगवान विराजमान है अपने नारायण स्वरूप में, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वहां सुंदर लीलाएं होती रहती हैं, और ये सारे दिव्य शरीर भगवान के और उनके भक्तों के, वो सब सच्चिदानंद हैं, दिव्य हैं। तो क्योंकि ऐसे धारणा प्रचलित है भौतिक सृष्टि में कि रूप मतलब भौतिक रूप, तो जो लोग भगवान के दिव्य रूप को मानना नहीं चाहते हैं या नहीं मान सकते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए ये विराट रूप की कल्पना की गई है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के सिखलाए हुए सिद्धांत के अनुसार भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन साथ साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि शक्ति भगवान है। भगवान को छोड़कर हम भगवान की शक्ति की ही उपासना करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अवश्य भगवान की शक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, परंतु भगवान की सेवा के लिए। इस तरह से भगवान के सृष्टि साथ साथ भिन्न है और अभिन्न है भगवान से। वैसे भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि पांच प्रकार के उपासकों का उल्लेख है। एक है जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, दूसरे हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तीसरे हैं जो इस विराट रूप की उपासना करते हैं, चौथे हैं जो भगवान की उपासना करते हैं परंतु सकाम भाव से, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये सकाम भक्त कहलाते हैं, जो अपने दुख को मिटाने के लिए, किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, जिज्ञासा की तृप्ति के लिए आदि भगवान के पास जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो उपासक हैं भगवान के वो हैं शुद्ध भक्त, जो केवल प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे प्रेममयी भक्तों को महात्मा कहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः अनन्य भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है वो महात्मा कहलाता है। जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, इस जड़ प्रकृति का नहीं, जो जड़ प्रकृति का आश्रय लेता है वो भगवान का भक्त नहीं कहलाता है, वो उपासक हो सकता है जैसे विराट रूप का उपासक है, परंतु वो भक्त नहीं है। भक्त वो है जिसके हृदय में भक्ति है, प्रेम है। तो उपासना और भक्ति में अंतर है। ये पांच प्रकार के उपासकों में से केवल पहले दो श्रेणी के जो लोग हैं वो भक्त कहलाते हैं। तो ये जो प्रेमी भक्त हैं जिनको महात्मा कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और हमें भी इस तरह के भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए। बल्कि ये हमारे जीवन की समसिद्धि है, परिपूर्णता है, सफलता है। लेकिन कम से कम व्यक्ति को दूसरे स्तर में तो आना चाहिए, कम से कम सकाम भक्त होना चाहिए, भक्तों के संग में रह के। फिर धीरे धीरे से भक्तों के संग में रहते हुए उसके अंदर जो भी भौतिक कामनाएं हैं वो भी सब धुल जाएंगी, मिट जाएंगी। तो बाकी जो तीन हैं, तीन तरह के उपासक हैं, उनके हृदय में प्रेम नहीं है। जो निराकार की उपासना करते हैं वो कैसे प्रेम करेंगे? हम किसी व्यक्ति से ही प्रेम कर सकते हैं। इस दुनिया में भी हम देखते हैं, हम हवा से प्रेम नहीं कर सकते, हम एक व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। तो जो भगवान के व्यक्तित्व को ही नहीं मानते हैं उनके हृदय में प्रेम नहीं हो सकता। और जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो भी अपने आराध्य देवताओं से प्रेम नहीं करते। एक व्यापार का संबंध होता है, क्योंकि वो कुछ चाहते हैं इन देवताओं से, इसलिए वो उनकी उपासना करते हैं। उनका हृदय भौतिक इच्छाओं से विकृत होता है। कौन सा है वह श्लोक भगवद गीता का? कामैस्तैस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते न्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्य नियता स्वया। तो कामैस्तैस्ते हृतज्ञान, जिनके हृदय में काम वासनाएं या भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं इस ब्रह्मांड में भोग करने के लिए, ब्रह्मांड में प्रगति करने के लिए, प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कृष्ण कहते हैं वो शरण जाते हैं अन्य देवों का, मेरा नहीं। और इस तरह से वो अपने वांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक लेन देन की बात होती है। और अक्सर देखा जाता है कि ऐसे देवताओं के उपासक उन फल प्रदान करने वाले देवताओं के भी विरुद्ध जाते हैं। तो ये प्रेम कैसे हो सकता है? और फिर अंत में रही बात विराट रूप के उपासकों की। ये अधिकतर लोग नास्तिक होते हैं, जो केवल भगवान के सृष्टि को मानते हैं। सृष्टि ही सत्य है। कई वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि भगवान के लिए क्या आवश्यकता है दुनिया में। हमने भगवान के इस तर्क को जीवन में लाया है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो फिर वो कहते हैं कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जब उनको बताया जाता है कि भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई, भगवान तो अनादि है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उनका कोई आदि नहीं है, वो हर एक वस्तु के आदि हैं, वो समस्त कारणों के कारण हैं, तब वो इस बात को नहीं मानते। तो वो कहते हैं यदि आप भगवान को सर्व कारण कारण कहते हैं तो हम सृष्टि को सर्व कारण कारण कहते हैं, कि हमेशा सृष्टि का अस्तित्व रहा है तो हम ऐसे कहेंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग भी एक प्रकार के उपासक हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति की उपासना करते हैं। ये सृष्टि ही परम है, सृष्टि ही सर्वस्व है, परंतु ये भक्त नहीं है। ये जानते नहीं है कि ये भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से उपासना कर रहे हैं। देवी देवताओं की उपासना भी भगवान की उपासना है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम, मेरी उपासना करने का ये सही तरीका नहीं है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना करना भी ये परिपूर्ण उपासना नहीं है। केवल जो महात्मा होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी उपासना परिपूर्ण उपासना कहलाती है। तो ये विराट रूप की उपासना विशेष करके उन लोगों के लिए है जिनके मन में भगवान के दिव्य रूप की बात नहीं बैठती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। इसका वर्णन भगवद गीता के 11वें अध्याय में पाया जाता है। 10वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से जानना चाहते थे उनके दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में, और भगवान ने उस 10वें अध्याय में 82 उनके विभूतियों का उल्लेख किया। लेकिन करते करते फिर भगवान भी सोचने लगे और कितने ऐश्वर्यों का वर्णन करूंगा, मेरे तो कोई ऐश्वर्यों का अंत नहीं है। तो फिर उनसे कहने लगे, हे अर्जुन, वैसे देखा जाए तो नाम तो अस्ति दिव्या नाम विभूति नाम परंतप न अंतः अस्ति विभूति नाम दिव्या नाम, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यत उद्देशिता, मैं केवल उदाहरण मात्र दे रहा हूं, जितने भी 82 मेरे विभूतियों का उदाहरण मैंने दिया वो केवल उदाहरण मात्र है। यद्यद् विभूतिमच्छत् सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी चीजें यहां देखी जाती हैं भौतिक सृष्टि में, जो सुंदर हैं, जो महान हैं, जो ऐश्वर्यशाली हैं, तुम जान लो कि वो मेरे तेज के अंश मात्र से प्रकट होते हैं। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांक्षेन स्थितो जगत। वो कहते हैं कि ये सब और कितने मैं विस्तार में वर्णन करते जाऊं हे अर्जुन, इनका कोई अंत नहीं है, केवल मेरे अंश के तेज के अंश मात्र से ये सारे ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। फिर भी इतना कहने के बाद भी फिर भी अर्जुन कहते हैं कि मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, आपकी विभूतियों का, आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं देखना चाहता हूं। तो अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने लिए नहीं, वास्तव में वो आने वाले पीढ़ियों को बतलाना चाहते थे कि भगवान कौन है, क्योंकि खास करके भारतवर्ष में ऐसे एक विडंबना है कि अनेक लोग जो साधारण मनुष्य हैं अपने आप को भगवान कह के घोषित करते हैं। तो आगे चल के अर्जुन सबके सामने कोई एक प्रमाण रखना चाहते थे जिसके द्वारा कोई भगवान कह के समझा जाए या पहचाना जाए। कोई यदि व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूं तो फिर उन्हें पूछना चाहिए कि आपका विराट रूप दिखाइए, वो विराट रूप नहीं दिखा पाएंगे तो हम जान सकते हैं कि वो भगवान नहीं है। तो आने वाले पीढ़ियों के लिए अर्जुन चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाएं। अर्जुन कौन है? श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान का दिव्य संग करते हैं इतनी निकटता से, जो पार्षद हैं, भगवान की लीलाओं में शामिल होते हैं, सदैव उनका संग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को विराट रूप के दर्शन से क्या लेना देना है? जो भगवान के मधुर संग का लाभ ले चुके हैं, केवल ऐसे ऐश्वर्यशाली प्रदर्शन से, विभूतियों का प्रदर्शन जब होता है तो ऐसे भक्तों के उससे क्या लेना देना है? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन अन्यों के लिए विराट रूप का दर्शन दिखलाने के लिए निवेदन कर रहे थे भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण ने फिर ये विराट रूप दिखा दिया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने भी लोग थे और किसी ने नहीं देखा, केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी जिसके द्वारा वो इस रूप को देख सके। ये दिव्य रूप भगवान का जो अर्जुन के सामने प्रकट था, इसमें और विराट रूप में अंतर है जो कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का निजी रूप आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप है, परंतु जो विराट रूप है वो जड़ पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए इन दोनों में स्पष्ट भेद किया जाता है इस श्लोक में भी और 11वें अध्याय में भी भगवद गीता में। महाभारत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को एक विश्वरूप दिखाया था, परंतु वो एक आंशिक विश्वरूप था। जिस तरह से एक विश्वरूप अर्जुन को दिखाया, उस तरह से विस्तार का विश्वरूप नहीं था वो। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए कौरवों की सभा में हस्तिनापुर में, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि युद्ध न हो, परंतु दुर्योधन ने एक नहीं माने, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और किसी की बात भी नहीं मानी। बल्कि जब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा बहुत डांटा दुर्योधन को, तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और कर्ण शकुनी आदि के साथ में उन्होंने चाहा कि श्री कृष्ण को हम गिरफ्तार कर ले, हम बांध दें, और श्री कृष्ण को यदि हम गिरफ्तार कर लेंगे तो पांडवों की हार निश्चित है, क्योंकि पांडवों की शक्ति श्री कृष्ण से आती है, तो हमें सर्वप्रथम श्री कृष्ण को पकड़ लेना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण को पकड़ना चाहे दुर्योधन, वो पता नहीं था उनको कि श्री कृष्ण केवल प्रेम से पकड़े जाते हैं, केवल भक्ति से बांधे जाते हैं। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को वृंदावन में रस्सियों से बांधा था? नहीं, अपने प्रेम से बांधा था। एक साधारण रस्सी भले भगवान को कैसे बांध सकती है? अब ये दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है ये तीन गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, जो हरेक प्राणी को बांध के रखते हैं। हरेक बद्ध जीव इस त्रिगुणमयी प्रकृति के अधीन है। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। इस त्रिगुणमयी प्रकृति के अधीन होकर बद्ध जीव भ्रमित हो जाता है और अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि ये सारे कार्य इन तीन गुणों के द्वारा कार्यरत होती हैं। तो जब हम इतने बद्ध अवस्था में हैं, ये तीन गुण इतने शक्तिशाली जो सबको बांध के रखती हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अधीन है ये तीन प्रकृति, तीन गुण। ये भौतिक प्रकृति भगवान श्री कृष्ण को बांध नहीं सकती, तो फिर एक रस्सी कैसे भगवान को बांध सकती है? इसलिए तात्पर्य ये है कि भगवान किसी भी भौतिक पद्धति से, भौतिक व्यक्ति से, भौतिक वस्तु से नहीं बांधे जा सकते। वो केवल अपने शुद्ध भक्त के प्रेम से बांधे जा सकते हैं, और यही मूल तात्पर्य है इस दामोदर लीला का, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया माता यशोदा ने। वैसे देखा जाए तो माता यशोदा की क्या स्थिति थी? वो बड़ी योगिनी नहीं थी, वो बहुत बड़ी संस्कृत की पंडित नहीं थी, बहुत बड़ी शास्त्रज्ञ व्यक्ति कोई नहीं थी। वो एक साधारण एक गांव की महिला थी, वो एक गृहिणी थी, लेकिन वो क्या विशेष शक्ति थी माता यशोदा के अंदर कि वो उस व्यक्ति को बांध पाए रस्सी से जो कि सारे प्रकृति में नहीं बंधे जाते, वह है उनका प्रेम। तो दुर्योधन अभक्त है, दुर्योधन की इस बात की जानकारी नहीं थी कि भगवान को बांधना है, गिरफ्तार करना है तो केवल प्रेम से किया जा सकता है। लेकिन दुर्योधन का घमंड बहुत था, तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं मेरे सैन्य बल से मैं श्री कृष्ण को गिरफ्तार कर दूंगा। उस समय जब कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन ने अपने सेनाओं से आदेश दिया गिरफ्तार करो कृष्ण को, तो कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे मैं तो सब जगह हूं, मुझे कहां कैसे गिरफ्तार करोगे। और उस समय उन्होंने अपना एक आंशिक विश्व रूप दर्शाया दुर्योधन को। दुर्योधन डर तो गए लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के शरण में नहीं आए। बाद में दुर्योधन कहने लगा अरे ये तो कोई योग सिद्धि का प्रदर्शन था, जैसे जादूगर कोई ऐसे करते हैं, कुछ प्रकट करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को भ्रमित कर देते हैं, कुछ दृश्य दिखा देते हैं, ऐसे ही कृष्ण योगी है और ये अपने योग सिद्धि के बल से कुछ जादू टोना किया हुआ है। तो दुर्योधन नहीं मान पाए, तो श्री कृष्ण ने विश्वरूप थोड़ा बहुत दिखाया और हंस के वहां से निकल पड़े, दुर्योधन नहीं पकड़ पाए उनको। तो भगवान का विश्वरूप ऐसे दिखाते हैं वो, लेकिन विशेष करके उन लोगों के लिए जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। और जिन लोगों को प्रेम है हृदय में, जो भगवान को एक आध्यात्मिक दिव्य व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जो अपने धाम में रह के भक्तों के साथ में सुंदर लीलाएं करते हैं, उनके लिए विश्वरूप की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम, कि भगवान का रूप जो मूल रूप है वो इस विराट रूप से भिन्न है। ये दिव्य आध्यात्मिक रूप भगवान श्री कृष्ण का है। तो इस रूप के सौंदर्य को, इस रूप के गुणों को, उनकी लीलाओं को जानने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमारा सारा जीवन इसी में बीतना चाहिए कि हम इस सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का, लीलाओं का, नामों का हम वर्णन, कीर्तन, श्रवण आदि करते रहें और उनकी सेवा हम करते रहें। इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, माइक पीछे।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
आपने पांच उपासकों के बारे में बताया, तो इसमें एक उपासक आपने बताया जो निराकार ब्रह्म को उपासना करते हैं, उसमें फिर आप उसके पहले बताया नहीं, निराकार ब्रह्म मतलब भगवान के दिव्य जो वैकुंठ लोक उसमें रहते हैं, निराकार ब्रह्म में वैकुंठ लोक रहते हैं, तो वो उसमें जो रहने वाले हैं वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है उनका, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? आपने बताया निराकार ब्रह्म को करने वाले शुद्ध भक्त नहीं होते, उपासक न करने वाले शुद्ध भक्त नहीं होते, लेकिन निराकार ब्रह्म में वैकुंठ लोक रहते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते?
एक तुलना दी जाए या उपमा दी जाए तो जिस प्रकार से सूर्य के किरणों में ये भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह और लोक तैर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहां निराकार ये ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के दिव्य शरीर का तेज है। तो इस दिव्य ज्योति में तैर रहे हैं सारे ग्रह आध्यात्मिक जगत के, जिनको वैकुंठ लोक कहते हैं। तो वैकुंठ लोक में रहने वाले जो भक्तों में और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले लोगों में अंतर ये है कि वैकुंठ लोक के निवासी वो भक्त हैं, वो भगवान को व्यक्ति के रूप में जानते हैं और उनके हृदय में सेवा भावना परिपूर्ण रूप से विकसित हुई होती है। परंतु जो निराकार के उपासक हैं उनके हृदय में प्रेम नहीं है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, ये केवल एक ज्योति है, प्रकाश है, चिन्मय है अवश्य, परंतु व्यक्तित्व न होने के कारण प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता, सेवा नहीं हो सकती। इसलिए भक्त लोग ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हनुमान जी भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं चाहिए। स्पृहयामी न मुक्तये, मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूं। भवबंध छिदे तस्य स्पृहयामी न मुक्तये, ऐसे भवबंधन का से मुक्त होकर मैं निराकार लीन में, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाऊं, ऐसी इच्छा मैं नहीं रखता मन में। क्यों? भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते, क्योंकि हे कृष्ण, हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका सेवक हूं, ये भावना नष्ट हो जाएगी। तो जब हम निराकार ब्रह्म में रहते हैं वहां पे सेवा भावना नहीं रहती है, और जहां सेवा भावना नहीं है वहां प्रेम नहीं है। चाहे निराकार ब्रह्म हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे ये विराट रूप हो, ये सब भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए इनके उपासकों को भी भगवान के उपासक कहते हैं, परंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से अविधि पूर्वक भगवान की उपासना करते हैं। जो सच्चे उपासक होते हैं वो भगवान के दिव्य रूप की सेवा करते हैं। ठीक है? हाँ, क्या उनकी प्रगति?
तो ये निराकार ब्रह्म को जो उपासक है वो आगे उनकी सुकृति हो सकती है क्या?
नहीं, उनकी सुकृति वही है, जब तक कि वो कोई शुद्ध भक्त का संग नहीं करेंगे वो भक्त नहीं बन सकते, वो निराकार में ही लीन रहेंगे, अणुमात्र जैसे आत्मा उनके निराकार में जाके स्थित हो जाएगी। जैसे सूर्य के किरणों के जो अणु रहते हैं वो बस रहते हैं, स्थित हैं वहां पे, वैसे ही आत्मा जाके निराकार में स्थित हो जाएगी बस, लेकिन वहां कोई सेवा नहीं, कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं होगा। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि कभी कभी ये जीव जो निराकार ब्रह्म में स्थित होते हैं भौतिक जगत में पुनः उनके पतन होने की संभावना रहती है, क्योंकि कम से कम भगत भौतिक जगत में कष्ट होने के बाद भी थोड़े रस तो है, बड़े वो विकृत रस क्यों ना हो, कुछ तो संबंध है, कुछ तो आदान प्रदान है, कुछ तो सेवा है। इसलिए वो जीव कभी कभी भौतिक सृष्टि में भी वापस चले आते हैं। तो निराकार ब्रह्म के उपासक भी भक्त बन सकते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी बतलाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, परंतु उनको शुद्ध भक्तों की आवश्यकता है। शुद्ध भक्तों के संग से कोई भी व्यक्ति, चाहे अभक्त हो, निराकार का उपासक हो, कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है। ठीक है? हरे कृष्ण। हाँ पूछिए।
पहला तक कि ये जो इनके निराकार इसमें जो है तो उनका पतन का कारण क्या?
निराकार उपासकों के पतन का कारण है कि उनका जीवन निरस होता है, भक्ति का रस नहीं होता, केवल भौतिक क्लेशों से मुक्ति होती है, शांति होती है, आनंद नहीं होता। ओम शांति शांति शांति, बस, लेकिन आनंद नहीं है।
तो ऐसे तक कि स्वर्ग लोक में जैसे सभी देवी देवता हैं, ये भी भगवान के भक्त हैं और अपना कार्यभार भी संभालते हैं, तो वहां रहते हुए भगवान की भक्ति करना क्यों उनके लिए संभव नहीं हो पाता है? वो पतन होके इसके प्रतिलोक पे बाद में आ जाते हैं।
हाँ, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए एक मध्यम अवस्था अनुकूल रहती है। यदि हम बहुत ज्यादा ऐश्वर्य और भोग के वातावरण में निवास कर रहे हैं तो तीव्रता से भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है, और यदि हम बहुत ही ज्यादा कष्ट के वातावरण में रह रहे हैं तब भी भक्ति करना कठिन हो जाता है। इसलिए स्वर्गलोक में और नरक लोक में, दोनों स्थानों में भगवान की भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पृथ्वी लोक सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी जगह, अनुकूल अवस्था है भक्ति करने के लिए। और पृथ्वी लोक में ये जो भारत है सबसे अनुकूल है, और भारत में वो आप सोचिए। ठीक है, हाँ, माइक यहां पे जा दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज जी।
हरे कृष्ण।
अभी कारणों देखाई विष्णु और गर्भों देखाई विष्णु और शिरो देखाई विष्णु जो है, ये तीनों समुद्र जो आते हैं ये भौतिक भी हैं, पकड़े हैं कि आध्यात्मिक है?
ये आध्यात्मिक है। कारण सागर तो आध्यात्मिक है, ये साधारण जल नहीं है। और जो गर्भोतक सागर है वो भी भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न होता है, इसलिए भी साधारण जल नहीं है। और उसी प्रकार से श्वेत द्वीप, जिसमें कि क्षीर सागर है, जिसमें कि क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं, ये एक आध्यात्मिक लोक है भौतिक ब्रह्मांड के अंदर। जैसे कभी कभी देखा जाता है दूसरे देश का दूतावास या दूतालय होता है ना, तो वो दूतावास की जो जगह है वो उस देश की संपत्ति मानी जाती है, तो वहां उस देश का झंडा चढ़ता है, सब होता है, नियम उस देश के लागू होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हर एक भौतिक ब्रह्मांड के भीतर भी ऐसे एक लोक होता है जहां स्वयं भगवान निवास करते हैं, वो है श्वेत द्वीप, जहां क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं, तो वो आध्यात्मिक लोक है। ठीक है, है भौतिक जगत के अंदर, जैसे वृंदावन यहां है भौतिक जगत के अंदर, लेकिन है पूरी तरह से दिव्य। तो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत को पूर्णतया या अंश रूप से इस भौतिक सृष्टि के अंदर भी प्रकट करा सकते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अपार है। ठीक है, हाँ, अंतिम प्रश्न।
महाराज आप बता रहे थे कि कारण सागर जो है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत
को बीच में है,
तो हमने सुना कहीं पर कि विरजा नदी भी,
हाँ, कारण सागर को विरजा नदी भी कहते हैं, इसे कभी सागर कहते हैं, कभी नदी कहते हैं। लेकिन जब हम नदी की बात सोचते हैं तो हम एक छोटे से नदी की बात सोचते हैं, लेकिन ये नदी समुद्र के समान है। तो कभी कभी विरजा भी कहते हैं और सागर भी कहते हैं, कारण सागर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।